मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है, या यूं कह लीजिए कि एक छोटा सा निर्देश देना है, और वह यह कि आप सबको मालूम है कि बकायदे यूपीएससी में इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। इस बीच में मैं इसको लेकर के आप सबसे बात नहीं कर सका हूं, इसलिए मैं आज आप सबसे ये बात करने जा रहा हूं कि यदि आपके लिए संभव हो तो प्लीज, यह बहुत अच्छा मौका है कि आप यूपीएससी के ऑफिस जाएं धौलपुर हाउस में, और वहां जाकर बकायदे जो इंटरव्यू दे करके स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं उनसे बात करें, उनको देखें, उनके अनुभवों को सुने। आप अभी भी पाएंगे कि बहुत से यूट्यूब चैनल से इसके बारे में डाल रहे हैं, वो स्टूडेंट से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि चूंकि हमें यूट्यूब पर तो सब सुनने को मिल ही रहा है तो वहां जाने से क्या फायदा होगा। दोनों में बहुत फर्क है। जब आप वहां जाएंगे, वहां से निकले हुए स्टूडेंट्स को आप देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आप उन्हें महसूस करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बातचीत करेंगे तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर ये विश्वास पैदा होगा कि नहीं, ये भी मेरे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। दोनों में बहुत फर्क है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने हिसाब से उनसे प्रश्न पूछ सकेंगे जो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि YouTube पर मैं भी देख रहा हूं और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही सामान्य किस्म के, एक ही तरह के प्रश्न होते हैं। सभी जितने भी इंटरव्यूअर हैं उन स्टूडेंट्स के लेने वाले, वो सब एक ही तरह के प्रश्न करते हैं, एक ही तरह के आपके जवाब सुनने को मिलते हैं। जितने भी लोग निकलते हैं उन सबसे वही वही प्रश्न होते हैं, तो आपके वो ज्यादा काम के नहीं होते हैं। आप जब उनसे बड़ी विनम्रता से मिलेंगे तो वो आपसे बात करके अपने आप को बहुत ही प्राउड महसूस करेंगे, और उन्हें खुशी होगी कि आप उनसे बात करने आए हैं। अपने मन में बिल्कुल किसी तरह का संकोच मत पालिए। यदि आपके लिए संभव हो सके तो मुझे लगता है कि इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। मैं बता नहीं सकता कि आप इससे कितने ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। इसका अनुमान आपको तभी लग सकेगा जब आप एक बार वहां होकर आएंगे, बल्कि यदि संभव हो तो 2-3 बार जाने की कोशिश कीजिए। दिल्ली में बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए तो यह सुनहरा अवसर है, और यहां तक कि यदि आप आसपास भी रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी का ही इसे आप एक पार्ट मान करके चलिए, और समय निकाल करके 1-2 दिन हो करके आ जाइए। और यहां तक कि अगर आप और दूर एरिया में रह रहे हैं और इस बीच में दिल्ली आने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो बेहतर है कि आप इसी अवसर का इस्तेमाल कर लीजिए वहां जाने के लिए। अपने प्लान को थोड़ा सा प्रीपोन कर लीजिए, पहले कर लीजिए, और चले जाइए और वहां स्टूडेंट से मिलिए। एक बात मैं यहां आप सबसे और कहना चाहूंगा कि यदि आप वहां जाते हैं तो एक काम आप मेरा भी करिए, और इनफैक्ट मेरे माध्यम से आप दूसरों का काम करेंगे, कि उनसे बातचीत करते हुए, उनका इंटरव्यू लेते हुए आपके जो भी अनुभव हैं वो अनुभव आप मुझे यदि लिख करके भेज सकेंगे तो मैं आपके माध्यम से वे अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचा सकूंगा। उनसे किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए, उन स्टूडेंट्स की क्या बैकग्राउंड थी, उनका अपना अनुभव कैसा रहा, ये सब उसके पॉइंट्स होंगे, सब टाइटल्स होंगे। मुझे 3 बातें बहुत जरूरी लगती हैं जो मैं चाहूंगा कि यदि आप मुझे लिख करके भेजें तो इनका ध्यान रखें। पहला तो यह है कि वो जो स्टूडेंट है जिसका आप इंटरव्यू लिख करके भेज रहे हैं उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उसके बैकग्राउंड के संदर्भ में ही होते हैं, अदरवाइज हम उसके इंटरव्यू को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद उसके इंटरव्यू में किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए वे प्रश्न, और तीसरा इंटरव्यू को लेकर के उसकी अपनी क्या धारणा थी। इन 3 वर्गों में अगर आप विभाजित करके मुझे भेज सकेंगे तो डेफिनेटली मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी रहूंगा, और निश्चित रूप से आपको तो इसका फायदा मिलेगा ही। तो दोस्तों, इस अनुरोध या निर्देश, जो भी आप चाहें कह सकते हैं, के बाद मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे आज भारत और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने कल के रेडियो न्यूज में एक पहली ही खबर सुनी होगी, और मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबर है, और वो ये है कि बकायदे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके भारत में एक वैश्विक केंद्र की शुरुआत की गई है, वर्ल्ड सेंटर की शुरुआत की गई, जिसे ग्लोबल सेंटर कहा गया है, और ये केंद्र जामनगर में है, जामनगर जो गुजरात का जामनगर है वहां इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केंद्र का उद्देश्य क्या है, इस केंद्र का उद्देश्य है कि जो परंपरागत, जो आप यूं कह लीजिए कि चिकित्सा के जो तौर तरीके हैं, जो परंपरागत जो दवाइयां हैं, उनको किस तरीके से हम मॉडर्न सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन के साथ जोड़ सकते हैं, या सामान्य तौर पर आप यूं कह लीजिए कि जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, और स्पेशली भारत का तो प्राचीन ज्ञान बहुत विशाल है, खासकर चिकित्सा को लेकर के। देखिए कि हमारे यहां आयुर्वेद कहा गया, वेद, आयुर्वेद, आयुर का मतलब होता है उम्र, वेद का मतलब होता है ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो हमारी उम्र में वृद्धि करता है, तो इसे आप स्वास्थ्य का ज्ञान कह सकते हैं। तो जो हमारा परंपरागत ज्ञान है और अभी जो आधुनिक विज्ञान है चिकित्सा के, उनमें कैसे तालमेल बैठाया जा सके, उनमें कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, यह काम इस केंद्र के द्वारा किया जाएगा और मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मान रहा हूं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसे आप भारत की जो पहचान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बन रही है उस रूप में भी आप ले सकते हैं। देखिए, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो अब पर्यटन केवल ऐसे ही नहीं है कि प्राकृतिक पर्यटन है या ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन है। आप देखिए कि पर्यटन में भी कितने सारे पर्यटन के रूप हो गए हैं। उसमें एक चिकित्सा पर्यटन भी है कि ऐसे लोग जो चिकित्सा कराने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं। आज से करीब 25-30 साल पहले भारत के लोग चिकित्सा कराने अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, अभी भी जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, और जो बहुत ही धनी लोग हैं वो वहां जाते हैं। अदरवाइज अब तो अमेरिका जैसे विकसित देशों के पेशेंट भारत आने लगे हैं चिकित्सा कराने के लिए। तो जब वो यहां आते हैं तो उसे एक चिकित्सा पर्यटन का नाम दिया गया है, और केरल वगैरह में तो बकायदे जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उसके लिए पेशेंट आते हैं। भारत के जो योग पद्धति को जो पूरे के पूरे विश्व में जो रिकॉग्निशन मिला है, यूएनओ ने उसे रिकॉग्नाइज किया है, दुनिया भर में इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है और इसकी विशेषताओं से जो लाभ लोगों को मिल रहा है, अब वो कोई बहुत अनजानी सी बात नहीं रह गई है। और मुझे लगता है कि योग का यह एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक ने बकायदे इसके लिए भारत को केंद्र के रूप में चुना है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने जो अभी इतने विस्तार से आपसे बात की है उसका एक बहुत ही साफ उद्देश्य है, और वो ये उद्देश्य है कि देखिए, घटना एक ही होती है, सिर्फ एक ही होती है, तो इस केंद्र का उद्घाटन करना एक घटना है। लेकिन मैं इतने विस्तार से इसके बारे में आपसे क्यों बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आप ये जान सके कि इस छोटी सी घटना का इस्तेमाल आप कैसे अलग अलग विषयों के लिए कर सकते हैं, अपने अलग अलग प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कर सकते हैं, और ये कमाल की बात होगी। और सच पूछे तो यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की सबसे अच्छी पद्धति भी होती है, और इस पद्धति के तहत सीधी सी बात है कि आप पढ़ते तो कम हैं लेकिन आप लिख बहुत ज्यादा सकते हैं। जो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी थोड़ा सा ज्ञान आपके पास है, इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसका इस्तेमाल कैसे आप मल्टीपर्पज तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जानबूझकर इस छोटे से, तथाकथित छोटे से विषय को मैंने इतना विस्तार दिया है। और यहां एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आपको मालूम होगा कि कुछ समय पहले, लगभग मेरे समझ से 2 महीने पहले की बात हो गई, 1.5-2 महीने पहले की, जो हमारे इंडियन मेडिकल काउंसिल है उसने बकायदे अब ये कहा है कि जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जब वो ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं यानी कि MBBS करके निकलते हैं, तो जो वो शपथ लेते हैं, तो अभी हिप्पोक्रेटिस शपथ लेते थे, ओथ लेते थे, अब उसकी जगह बकायदे सुश्रुत की वो शपथ लें। और इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद भी उठा कि क्या जरूरत है पहले की शपथ को हटाने की, लेकिन अब सुश्रुत जो हमारे बहुत ही बड़े चिकित्सा के ऋषि रहे हैं, उन्होंने जो शपथ ली है या जो अपेक्षा करते थे अपने चिकित्सकों से, अपने वैद्यों से, अब उसकी शपथ लिया करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में इसकी भी जानकारी आपके पास होनी बेहतर होगी। दोस्तों, अब दूसरी घटनाएं भी हैं लेकिन उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब मैं आता हूं सीधे सीधे मुख्य विषय पर, और वह है भारत और पड़ोसी राष्ट्र। मैंने आज आपको 2 विशेष प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की हैं, और सच पूछे तो ये जो मुख्य विषय है इसका संदर्भ वही 2 क्लिपिंग्स हैं। ये दोनों क्लिपिंग्स दैनिक भास्कर की हैं, और उसमें एक है भारत से व्यापार बहाली चाहता है पाकिस्तान, कि किस तरीके से अब भारत को ऐसा लगता है कि, आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है, भारत को तो नहीं कहना चाहिए, भारत को तो लगता ही है, लेकिन पाकिस्तान को अब ऐसा लगता है कि उसे भारत से अपना व्यापार बढ़ाना चाहिए। और ये जो लग रहा है ये पाकिस्तान की सरकार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं उनकी बात है। अब वो सरकार से ये कह रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि दबाव डाल रहे हैं कि भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जाना चाहिए। भारत और चीन का व्यापार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जबकि बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच में इतने तनाव की स्थिति है। तो ठीक है, आपकी राजनीति जो भी कहती हो, तनाव जो भी बने हुए हों, लेकिन भारत के साथ व्यापार बढ़ाया जाना चाहिए, वे इसकी मांग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, इस बीच में आप जान चुके हैं कि जो पाकिस्तान की हालत है वो बहुत बेहतर नहीं रह गई है ना, राजनीतिक उथल पुथल जो मची हुई है आप अच्छे से वाकिफ हैं, उसकी जो इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो ही चुके हैं, चीन के साथ उसके साथ जरूर संबंध बेहतर बने हुए हैं, लेकिन अभी चीन भी कुछ विशेष करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो भारत की तरफ वहां के व्यापारी देख रहे हैं तो इसे बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कहा जा सकता है। और डेफिनेटली अगर इस तरह का प्रस्ताव मिलेगा तो भारत उस पर विचार करेगा और हो सकता है कि हमारा व्यापार उसके साथ बढ़े। दूसरी क्लिपिंग्स है दोस्तों, वो श्रीलंका को लेकर के है, वेद प्रताप वैदिक जी का लेख है। इसे आप दो एंगल से पढ़ेंगे। जो इसका पहला एंगल है वो ये है कि श्रीलंका की जो आज आर्थिक स्थिति है, उसकी जो दुर्गति हुई है वो क्यों हुई है। ठीक है, वो श्रीलंका के संदर्भ में है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो वो आप उसे एक तरह से इकोनॉमिक्स का एक सिस्टम मान करके चलिए कि किसी भी देश में कब बदहाली की स्थिति आ जाती है। इसीलिए इससे पहले भी आपने कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें ये कहा गया है कि श्रीलंका से सबक ले भारत। भारत क्या, दुनिया के सारे देशों को सबक लेने चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स अपने सिस्टम से काम करता है, और अगर आप उस सिस्टम को तोड़ करके और अपनी तानाशाही चलाते हैं या अपनी इच्छा को लादते हैं अर्थव्यवस्था पर, तो उससे इसी तरह की बुरी स्थितियां पैदा होंगी जो श्रीलंका ने किया। तो इस रूप में आप पढ़ेंगे। और जो दूसरा इसका रूप है वो ये है कि भारत किस तरीके से लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है। और भारत श्रीलंका की ही मदद नहीं कर रहा है, बल्कि आप देखिए कि अफगानिस्तान में जब स्थितियां खराब हुई तब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, खासकर जब हमारा गंगा अभियान जब चला ऑपरेशन, तब बकायदे हमने वहां के लोगों को निकाला। इस बीच में खासकर कोरोना के समय आप देखिए कि कैसे हमने पड़ोसी देशों की अपनी मदद की। नेपाल के अभी प्रधानमंत्री आए थे, उनके प्रति भी हमारा बड़ा सकारात्मक रुख रहा है। तो भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है और इसके बारे में उसने कभी किसी तरह की कोई हिचक या संकोच नहीं दिखाई है। तो इस तरीके से भारत धीरे धीरे आप यूं कह लीजिए कि वैश्विक स्तर पर तो शक्तिशाली होता ही जा रहा है, साथ ही साथ पड़ोसी देशों के प्रति भी जो एक कुटुंबकम की भावना है, लगातार वो अपनी नीतियों के जरिए, अपने कार्यों के जरिए उसका प्रदर्शन कर रहा है। यह बात भी आपको इस लेख में पढ़ने को मिलेगी, तो आप इस रूप में भी इसे जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस अब होंगी वे 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच होने जा रही हैं। इसके लिए एक स्टूडेंट हैं देव आनंद मंडल, जो मधुबनी बिहार से हैं, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो देव आनंद, आपका इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं राहुल पुनिया, शिवम प्रतापगढ़ से, रवि दत्त और आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।